एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है हमारी आज के इस ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक ऐसी सोच की दुनिया में कह सकते हैं गोता लगाने वाले हैं जिसने चीन, कोरिया, जापान जैसे कई कई देशों की संस्कृति और समाज पर हजारों साल से गहरी छाप छोड़ी है।
बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, आज भी जिंदा है, बहस का मुद्दा है, प्रेरणा का स्रोत भी है। हम बात करें कन्फ्यूशियवाद की, और हमारी चर्चा का आधार है प्रोफेसर डैनियल के गार्डनर की इस विषय पर लिखी बहुत ही सरल और सारगर्भित किताबें, जैसे कन्फ्यूशनिज्म अ लिविंग ट्रेडिशन और कन्फ्यूशनिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आज 21वीं सदी में 2500 साल पुरानी इस चीनी विचारधारा की बात करना क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ पुरानी दकियानूसी बातें नहीं, कई लोग तो इसे मतलब कठोर नियमों और सत्ता के आगे झुकने से जोड़कर देखते हैं।
बिल्कुल, और यहीं पे गार्डनर का नजरिया काम आता है। वो इन्हीं क्या कहते हैं गलत फहमियों को चुनौती देते हैं। वो दिखाते हैं कि कन्फ्यूशियवाद कोई पत्थर में लिखी इबारत नहीं है, बल्कि एक बहती नदी की तरह है, लगातार विकसित होती, बदलती हुई, अपने आसपास की दुनिया से संवाद करती हुई एक जीवंत परंपरा।
जीवंत परंपरा,
हाँ। और इसके मूल सिद्धांत कैसे एक बेहतर इंसान बने, समाज में तालमेल कैसे लाएं, शिक्षा का असली मतलब क्या है, ये सवार तो आज भी उतने ही अहम है, शायद पहले से ज्यादा।
सही कहा। तो चलिए इस सोच की नदी में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि गार्डनर हमें कन्फ्यूशियसवाद के बारे में क्या नई बातें बताते हैं, और हाँ, ये आज हमारे लिए कैसे मायने रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं लेखक से। कौन है ये डैनियल के गार्डनर और क्यों उनकी बात सुनना खास है?
हाँ, तो डैनियल के गार्डनर वो अमेरिका के स्मिथ कॉलेज में चीनी इतिहास और दर्शन के जाने माने प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के मतलब 30 साल से ज्यादा चीनी बौद्धिक इतिहास, खासकर कन्फ्यूशियोवाद को समझने और पढ़ाने में लगाए हैं। हार्वर्ड से पीएचडी की है, चीन और ताइवान में लंबा समय बिताकर मूल ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो उनकी अकादमिक पकड़ तो मतलब बहुत मजबूत है।
लेकिन सिर्फ अकादमिक होना ही काफी नहीं होता है ना, कुछ खास बात क्या है उनमें, मतलब क्यों उनकी किताब इतनी अहम मानी जाती है?
हाँ, खास बात यह है कि गार्डनर सिर्फ इतिहासकार नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक नजरिया भी रखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कब क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाते हैं कि उन विचारों का मतलब क्या था और आज वो क्यों जरूरी है। और उनकी सबसे बड़ी खूबी है मेरे ख्याल से कि वो मुश्किल अकादमिक बहसों को आम पाठक के लिए, हम सब के लिए, एकदम सरल और दिलचस्प तरीके से पेश कर पाते हैं, जैसे कोई कहानी सुना रहे हों।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, और ये भी महत्वपूर्ण है शायद कि वो पश्चिमी दुनिया में कन्फ्यूशियवाद को लेकर जो आम सवाल या शंकाएं हैं उन्हें समझते हैं।
बिल्कुल,
जैसे क्या ये व्यक्ति की आजादी को दबाता है, क्या ये सिर्फ मर्दों के लिए है, इस तरह की बातें।
एग्जैक्टली, वो इन सवालों से कतराते नहीं, बल्कि अपनी किताबों में सीधे उनका सामना करते हैं सबूतों और तर्कों के साथ, और यही चीज उन्हें इस विषय पर एक भरोसेमंद आवाज बनाती है।
सही,
बिल्कुल। तो अब जब हम लेखक के नजरिए को समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि उनकी किताबें कन्फ्यूशियवाद को कैसे पेश करती हैं,
उनका मुख्य मकसद क्या है।
हाँ, तो गार्डनर का मिशन काफी साफ है। वो कन्फ्यूशियवाद को एक म्यूजियम में रखी पुरानी धूल खाती चीज की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई परंपरा के रूप में दिखाना चाहते हैं। ये उन सभी के लिए है जो मान लीजिए पूर्वी एशिया के संस्कृतियों को समझना चाहते हैं, या फिर दुनिया की आज की चुनौतियों पर, जैसे नैतिक नेतृत्व की कमी हो, या शिक्षा का गिरता स्तर, समाज में बढ़ता टकराव, इन सब पर एक अलग सदियों पुराना नजरिया ढूंढ रहे हैं।
सही,
वो हमें कहानी की शुरुआत में ले जाते हैं, प्राचीन चीन का वो उथल पुथल वाला दौर जिसे वसंत और शरद काल कहते हैं। हर तरफ लड़ाई, नैतिक पतन, अव्यवस्था, और इसी माहौल में कन्फ्यूशियस नाम के एक विचारक सामने आते हैं और कहते हैं, रुको, समाज को ठीक करने का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारे रिश्तों में है।
अच्छा, और फिर गार्डनर हमें दिखाते हैं कि कैसे कन्फ्यूशियस के ये शुरुआती विचार एक छोटी सी धारा से शुरू होकर अलग अलग राजवंशों, अलग अलग विचारकों के जरिए एक विशाल नदी बन गए। कभी इसे राजाओं ने अपनाया, कभी इसे दबाया गया, कभी इसमें नई धाराएं आकर मिली, जैसे बौद्ध धर्म और दाओवाद से टक्कर हुई और फिर नव कन्फ्यूशियवाद उभरा।
तो अगर गार्डनर के केंद्रीय तर्कों को संक्षेप में बताना हो, मान लीजिए तीन मुख्य बातें।
हाँ, तो पहली बात, जैसा हमने कहा कि कन्फ्यूशीवाद कोई जमी हुई चीज नहीं बल्कि एक गतिशील लगातार विकसित होती परंपरा है। ये कोई एक किताब या भगवान वाला धर्म नहीं है बल्कि एक नैतिक और दार्शनिक खोज है एक तरह से। दूसरी, इसका दिल है नैतिक आत्म सुधार, मतलब सेल्फ कल्टिवेशन, यानी खुद को लगातार बेहतर इंसान बनाने की कोशिश। और ये कोशिश सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि इसलिए ताकि समाज में सद्भाव और व्यवस्था आ सके।
अच्छा,
और तीसरी बात कि ये सिर्फ पूजा पाठ या निजी नैतिकता तक सीमित नहीं, ये जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है जिसमें नैतिकता, राजनीति, शिक्षा, परिवार, समाज, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, और वो इस आम धारणा को तोड़ते हैं कि कन्फ्यूशियसवाद मतलब आंख बंद करके सत्ता की सुनना या पुराने नियमों में जकड़े रहना, बल्कि वो इसे 2500 साल से चली आ रही एक लंबी बातचीत की तरह देखते हैं। एक ऐसी बातचीत जिसका बुनियादी सवाल आज भी वही है, हम इंसान अपनी तमाम कमजोरियों और इच्छाओं के साथ कैसे मिलकर एक अच्छा, न्यायपूर्ण और खुशहाल समाज बना सकते हैं।
हाँ, ये सवाल तो आज भी हमारे सामने खड़ा है ना।
बिल्कुल, चलिए अब इस बातचीत के कुछ अहम पड़ाव और मुख्य विचारों को और गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है खुद कन्फ्यूशियस से।
हाँ, कन्फ्यूशियस, असली नाम तो कोंग फूजी था शायद, 551-479 ईसा पूर्व। वो उस भयानक दौर में जी रहे थे जब चीन छोटे छोटे राज्यों में बटा था और लगातार लड़ाइयां होती थीं। नैतिक मूल्यों का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। कन्फ्यूशियस ने इस अराजकता का हल सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर शासक और लोग नैतिक बन जाएं, अपने रिश्तों को सही ढंग से निभाएं, तो समाज में शांति अपने आप आ जाएगी।
और उन्होंने एक आदर्श व्यक्ति का खाका खींचा, जुनजी, जिसे हम सज्जन व्यक्ति या आदर्श इंसान कह सकते हैं। और सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि उन्होंने कहा, जुनजी कोई जन्म से नहीं बनता, अपनी जाति या खानदान से नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, शिक्षा और लगातार नैतिक अभ्यास से जुनजी बन सकता है।
सोचिए उस समय के समाज व्यवस्था में ये कितना बड़ा विचार था।
बिल्कुल, इस नैतिक अभ्यास, इस आत्म सुधार के लिए उन्होंने कुछ बुनियादी सिद्धांतों की बात की। सबसे अहम है रिन।
रिन?
हाँ, रिन। इसका कोई एक शब्द में अनुवाद मुश्किल है। मानवीयता, करुणा, भलाई, परोपकार, ये इंसान होने का सार है। मतलब दूसरों के दर्द को महसूस करने और उनके भले की सोचने की क्षमता।
करुणा।
हाँ, फिर आता है ली। अक्सर इसका अनुवाद रीति रिवाज या शिष्टाचार किया जाता है, लेकिन यह सिर्फ बाहरी कर्मकांड या तौर तरीके नहीं है। यह समाज में सही ढंग से व्यवहार करने का पूरा ढांचा है। बड़ों का आदर, छोटों से स्नेह, दोस्तों से ईमानदारी। गार्डनर समझाते हैं कि ली वो तरीका है जिससे हम अपने अंदर की रेन यानी करुणा को बाहर दुनिया में दिखाते हैं। यह सामाजिक सद्भाव का व्याकरण है एक तरह से।
हाँ, लेकिन ये ली या रीति रिवाज, क्या ये सिर्फ बाहरी दिखावा या थोपी हुई चीज नहीं बन सकता? कई बार लगता है ना कि लोग सिर्फ नियम निभा रहे हैं, दिल से नहीं। गार्डनर इसे कैसे देखते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है ये। गार्डनर इस पर जोर देते हैं कि कन्फ्यूशियस के लिए ली कभी भी खोखला कर्मकांड नहीं था। ली का पालन तभी सार्थक है जब उसके पीछे रेन यानी सच्ची भावना हो।
अच्छा,
बिना रेन के ही ली सिर्फ दिखावा है, और इसी तरह बिना ली के रेन सिर्फ एक अधूरी भावना रह जाती है। उसे समाज में व्यक्त होने का रास्ता नहीं मिलता। दोनों का संतुलन जरूरी है।
अच्छा, ये संतुलन महत्वपूर्ण है। रेन और ली के अलावा और कौन से मुख्य सिद्धांत
हैं? और भी हैं, जैसे यी यानी धार्मिकता या न्यायसंगतता, सही और गलत को समझने की नैतिक समझ, भले ही उसमें अपना नुकसान क्यों ना हो रहा हो। जी यानी बुद्धिमत्ता, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक निर्णय लेने के लिए जरूरी समझदारी। और टियान यानी स्वर्ग।
स्वर्ग मतलब भगवान जैसा कुछ?
नहीं, ये कोई दाढ़ी वाले बाबा जैसा भगवान नहीं है, बल्कि एक नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, एक ऑर्डर। इसी से जुड़ा है टियान मिंग या स्वर्ग का आदेश, मैंडेट ऑफ हेवन।
हाँ, ये सुना है मैंने।
हाँ, तो इसका मतलब था कि राजा को शासन करने का हक तभी तक है जब तक वो नैतिक रूप से सही है और प्रजा का भला करता है। अगर वो अत्याचारी हो जाए तो प्रजा को उसे हटाने का भी अधिकार है। ये भी बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में।
वाकई? और शिक्षा, हमने सुना है कन्फ्यूशियसवाद शिक्षा पर बहुत जोर देता है।
बिल्कुल, कन्फ्यूशियसवाद का शिक्षा पर जोर शायद उसकी सबसे स्थायी देन है, लेकिन यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या परीक्षा पास करना नहीं था। शिक्षा का असली मकसद था नैतिक चरित्र का निर्माण करना।
चरित्र निर्माण,
हाँ, सीखना पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात, कन्फ्यूशियस ने कहा कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। ये उस समय के कुलीन समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी।
लेकिन अगर कन्फ्यूशियस ने नैतिकता पर इतना जोर दिया, तो उनके बाद ये बहस क्यों छिड़ी कि इंसान का स्वभाव मूल रूप से अच्छा है या नहीं? क्या वो खुद इस पर स्पष्ट नहीं थे?
ये एक दिलचस्प सवाल है और दिखाता है कि परंपरा कैसे विकसित होती है। देखिए, कन्फ्यूशियस ने खुद मानव स्वभाव पर बहुत ज्यादा लिखा नहीं, उनका जोर अभ्यास और सुधार पर था। उनके बाद दो बड़े विचारक आए जिन्होंने इस सवाल को उठाया। एक थे मेंसियस, उनका मानना था कि इंसान का स्वभाव पानी की तरह है जो हमेशा नीचे की ओर बहता है, यानी स्वाभाविक रूप से अच्छा है।
अच्छा,
हाँ, उन्होंने वो मशहूर उदाहरण दिया कि कोई भी किसी बच्चे को कुएं में गिरते देखेगा तो उसे बचाने दौड़ेगा, ये सोचे बिना कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। शिक्षा का काम बस इस अच्छाई को सींचना है, उसे बाहर लाना है।
और दूसरे विचारक,
उनका क्या मानना था? दूसरे थे शुनजी। उनका नजरिया बिल्कुल उल्टा था। वो मानते थे कि इंसान का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, जैसे टेढ़ी लकड़ी।
टेढ़ी लकड़ी
अब शुरू से ही कोई एक मोनोलिथिक विचार नहीं था, उसमें अलग अलग मतों की गुंजाइश थी।
और फिर आगे चलकर ये विचार सिर्फ दार्शनिक बहस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजकाज का हिस्सा बन गए।
हाँ बिल्कुल, हान राजवंश 206 ईस्वी पूर्व 220 ईस्वी के समय कन्फ्यूशियसवाद को राज्य की विचारधारा का दर्जा मिला। किन राजवंश की क्रूरता के बाद हान शासकों को लगा कि समाज को जोड़ने के लिए एक नैतिक व्यवस्था चाहिए, तो डोंग झोंगशू जैसे विद्वानों ने कन्फ्यूशियसवाद को राजशाही के साथ जोड़ा, सम्राट को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल जैसा बताया।
अच्छा,
और सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी नौकरियों के लिए कन्फ्यूशियस के ग्रंथों पर आधारित परीक्षाएं शुरू हुई। आप सोचिए, लगभग 2000 साल तक चीन में अफसर बनने के लिए कन्फ्यूशियस पढ़ना जरूरी था।
2000 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। लेकिन क्या इस दौरान कन्फ्यूशियवाद वैसा का वैसा ही बना रहा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। सोंग राजवंश 960 से 1279 के समय बौद्ध और दाओ धर्म का प्रभाव काफी बढ़ गया था। उनके दार्शनिक विचारों जैसे मन की प्रकृति, ब्रह्मांड की संरचना, इन सवालों का जवाब देने के लिए कन्फ्यूशियवाद में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे नव कन्फ्यूशनिज्म कहते हैं। और इसके सबसे बड़े नाम थे जूशी।
जूशी, उन्होंने क्या नया जोड़ा इसमें?
जूशी ने कन्फ्यूशियवाद को एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार दिया। उन्होंने दो अवधारणाओं पर बहुत जोर दिया, एक ली यानी सिद्धांत या पैटर्न, ये हर चीज का मूल, अच्छा, अंतर्निहित स्वभाव है जो ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखता है।
ली,
हाँ। और दूसरा ची यानी जीवन शक्ति या भौतिक ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है। ये चीज साफ भी हो सकती है और मैली या धुंधली भी।
तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए? इसका क्या मतलब है, मतलब ली और ची का?
देखिए, जूशी ने कमर कि हम सब का मूल स्वभाव यानी ली तो अच्छा है, लेकिन हमारी ची, हमारी जो भौतिक ऊर्जा है, उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं जो हमारी भावनाओं, इच्छाओं को गड़बड़ कर सकती हैं और हमारी अच्छाई को ढक सकती हैं।
अच्छा,
इसलिए आत्म सुधार का रास्ता है चीजों की जांच करना, ज्ञान, दुनिया को समझना, अपने मन को शांत करना, ताकि हम अपनी अशुद्ध ची को हटाकर अपने शुद्ध ली यानी स्वभाव को पहचान सकें और उसके अनुसार जी सकें। उन्होंने ही चार पुस्तकें यानी द फोर बुक्स को शिक्षा का आधार बनाया जो सदियों तक चीन और आसपास के देशों में पढ़ी गईं।
ये तो काफी गहरा दर्शन है, लेकिन फिर आधुनिक समय आया, पश्चिमी ताकतें आईं, तब कन्फ्यूशियवाद का क्या हुआ? मुझे लगता है तब तो इसे बहुत चुनौती मिली होगी।
हाँ, वो कन्फ्यूशियवाद के लिए बहुत मुश्किल दौर था। 19वीं-20वीं सदी में कई लोगों ने चीन के पिछड़ने और कमजोर होने का जिम्मेदार कन्फ्यूशियवाद को ठहराया। कहा गया कि ये विज्ञान विरोधी है, प्रगति का दुश्मन है, महिलाओं को दबाता है। मे फोर्थ आंदोलन 1919 और खासकर माओ की सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 में तो इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई। मंदिरों, किताबों, परंपराओं, सबको निशाना बनाया गया।
तो क्या ये खत्म हो गया, मतलब इतनी कोशिशों के बाद?
यहीं पे कहानी में एक और मोड़ आता है। गार्डनर दिखाते हैं कि अपनी तमाम आलोचनाओं और हमलों के बावजूद ये परंपरा मरी नहीं, बल्कि 21वीं सदी में चीन और पूर्वी एशिया में इसका एक हैरान करने वाला पुनरुत्थान हो रहा है। लोग फिर से इसमें व्यक्तिगत नैतिकता और अर्थ ढूंढ रहे हैं। सरकारें इसे सॉफ्ट पावर और सामाजिक एकता के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अकादमिक जगत में भी इस पर रुचि बहुत बड़ी है।
अरे वाह।
हाँ, ये दिखाता है कि ये वाकई एक जीवंत परंपरा है।
ये पूरी यात्रा तो कमाल की है, 2500 साल का सफर। तो इस सब से गार्डनर के नजरिए से कुछ मुख्य संदेश या सबक क्या निकलते हैं जिन्हें हम आज याद रख सकते हैं, कुछ खास बातें?
हाँ, कुछ बातें वाकई बहुत अहम हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी, नैतिक आत्म सुधार की केंद्रीयता। कन्फ्यूशीवाद का मूल मंत्र है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। बेहतर इंसान बनना सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में करने वाला काम है, एक सतत प्रक्रिया है। ये सिर्फ सोचना नहीं, करना है।
और ये आत्म सुधार सिर्फ अपने लिए नहीं है, मतलब अपनी शांति के लिए, इसका समाज से क्या लेना देना है?
बिल्कुल, यही दूसरा बड़ा संदेश आता है, व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का गहरा जुड़ाव। कन्फ्यूशीवाद व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता। आप एक अच्छे इंसान बनकर ही एक अच्छे परिवार का सदस्य, एक अच्छे नागरिक और अंततः एक बेहतर दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। ये आज के व्यक्तिवाद और समूहवाद के बीच एक तीसरा रास्ता दिखाता है, जहां व्यक्ति की जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है।
परंपरा को कुछ पुराना, ना बदलने वाला मान लेते हैं, लेकिन गार्डनर दिखाते हैं कि कन्फ्यूशीवाद हमेशा बदलता रहा, बहस करता रहा, नई चुनौतियों के जवाब ढूंढता रहा। यही शायद इसके इतने लंबे समय तक जिंदा रहने का राज है। परंपरा जड़ नहीं, जीवंत हो सकती है।
सही कहा। चौथा संदेश शिक्षा के बारे में है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान या डिग्री नहीं, चरित्र निर्माण है। कन्फ्यूशियसवाद हमें याद दिलाता है कि बुद्धि और नैतिकता साथ साथ चलने चाहिए। आज जब हम भारत में भी देखते हैं कि शिक्षा का जोर अक्सर सिर्फ नौकरी पाने या स्किल सिखाने पर रह गया है, तो ये विचार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम चरित्र निर्माण को उतनी अहमियत दे रहे हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है। और कोई मुख्य संदेश?
हाँ, पांचवा, राजनीतिक सत्ता का नैतिक आधार। कन्फ्यूशियसवाद का मानना है कि नेता या शासक का असली अधिकार उसकी ताकत या कानून बनाने की क्षमता से नहीं, बल्कि उसके नैतिक आचरण से आता है। एक अच्छा नेता उदाहरण पेश करता है, सिर्फ हुक्म नहीं चलाता।
आज की राजनीति को देखते हुए ये कितना जरूरी सबक लगता है।
बिल्कुल।
अच्छा, इन संदेशों के अलावा क्या गार्डनर की किताबों से कुछ ऐसे खास विचार या कथन है जो दिमाग में रह जाते, कुछ यादगार पंक्तियां?
हाँ, कई हैं। एक तो बहुत मशहूर है, सज्जन व्यक्ति सही को समझता है, छोटा व्यक्ति सिर्फ लाभ को समझता है।
हाँ, ये सुना है।
ये सीधे सीधे नैतिकता को निजी फायदे से ऊपर रखता है। मतलब फैसला लेते समय ये सोचना कि सही क्या है, ना कि सिर्फ मेरे लिए फायदेमंद क्या है।
ये तो आज भी कितना प्रासंगिक है, व्यापार से लेके राजनीति तक। और
एक शिक्षा पर है, बिना सोचे सीखना व्यर्थ है, बिना सीखे सोचना खतरनाक है।
अच्छा।
हाँ, मतलब सिर्फ रटना बेकार है, अगर हम उस पर विचार न करें, मनन न करें। और बिना ज्ञान या आधार के सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना या बहस करना खतरनाक हो सकता है। सीखने और सोचने में संतुलन चाहिए।
तीसरा वाला मेरा पसंदीदा है, जिसे कन्फ्यूशियस का स्वर्ण नियम कहते हैं, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों पर मत थोपो। कितनी सरल और कितनी गहरी बात है।
हाँ, इसे शू यानी पारस्परिकता या सहानुभूति कहते हैं। कोई भी काम करने से पहले बस इतना सोच लें कि मैं चाहूंगा कि कोई मेरे साथ ऐसा करे, ये रिश्तों का आधार है।
बिल्कुल।
चौथा नव कन्फ्यूशियसवाद से जुड़ा है, जूशी का विचार, सिद्धांत ली और जीवन शक्ति ची का संबंध। ये समझने में मदद करता है कि भले ही हमारा मूल स्वभाव ली अच्छा हो, हमारी भौतिक ऊर्जा, आदतें, भावनाएं ची उसे कैसे ढक सकती हैं। आत्म सुधार इसी ची को साफ करके अपनी अच्छी प्रकृति को बाहर लाने की प्रक्रिया है। ये थोड़ा दार्शनिक है, पर खुद को समझने में मदद करता है।
और पांचवा?
पांचवा, शासकों के लिए एक सीधी सलाह है, अगर 1000 रथों वाले राज्य पर शासन करना हो तो काम पर ध्यान दो, अपने वादे निभाओ, खर्च में किफायत बरतो और प्रजा से प्रेम करो। इसमें नैतिकता भी है, व्यावहारिकता भी और जनता की देखभाल भी। एक अच्छा लीडर कैसा हो, उसका सार है इसमें।
ये सब विचार सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगते हैं, पर क्या वाकई हम इन्हें अपनी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं?
हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है, और गार्डनर का जोर इसी बात पर है कि ये जीवंत परंपरा है, यानी इसे जिया जा सकता है। व्यक्तिगत विकास के लिए ही देख लीजिए, रोज रात को सोने से पहले बस 5 मिनट सोचना कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कल मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये कन्फ्यूशियस का आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन ही तो है।
हाँ, ये तो किया जा सकता है।
बिल्कुल। लगातार कुछ नया सीखना, चाहे वो कोई हुनर हो या कोई नई भाषा, ये भी उसी आजीवन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
और नेतृत्व या मैनेजमेंट में?
हाँ, आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में एथिकल लीडरशिप की बहुत बात होती है। कन्फ्यूशियस वाद तो हजारों साल से यही कह रहा है, सिर्फ टारगेट पूरा करना या प्रॉफिट कमाना ही लीडर का काम नहीं है, अपनी टीम के लोगों का ध्यान रखना, उनके विकास में मदद करना, खुद एक नैतिक उदाहरण बनना, ये सब कन्फ्यूशियस की सीखें हैं।
सही।
भारत में भी कई सफल पारिवारिक व्यवसायों में या गुरु शिष्य परंपरा में ये भावना दिखती है, जहां रिश्ता सिर्फ पैसे का नहीं होता, विश्वास और देखभाल का भी होता है।
बिल्कुल।
और रिश्तों में भी ये काम आ सकता है। आज जहां परिवार टूट रहे हैं, समाज में अकेलापन बढ़ रहा है, वहां कन्फ्यूशियसवाद हमें आपसी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। माता पिता के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, दोस्तों के प्रति वफादारी,
ये सब पुराने जमाने की बातें लग सकती हैं, लेकिन शायद यही चीजें रिश्तों को गहरा और टिकाऊ बनाती हैं।
हाँ, और शिक्षा में तो इसका सीधा उपयोग है। स्कूलों और घरों में बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा, जिम्मेदार और ईमानदार इंसान बनने के लिए प्रेरित करना। शिक्षकों को सिर्फ सिलेबस खत्म करने वाला नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल, एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में देखना।
और लड़ाई झगड़े या विवाद सुलझाने में भी इसका कोई रोल हो सकता है?
हाँ, कन्फ्यूशियावाद का नजरिया सजा देने या बदला लेने पर उतना नहीं है, जितना कि रिश्ते को सुधारने और समाज में सद्भाव वापस लाने पर होता है। गलती करने वाले को शर्मिंदा करके बाहर निकालने के बजाय उसे सुधार कर वापस समाज में शामिल करने की कोशिश, ये पश्चिमी न्याय व्यवस्था से थोड़ा अलग नजरिया है, जो शायद कुछ मामलों में ज्यादा कारगर हो सकता है।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक प्राचीन दर्शन नहीं, बल्कि आज भी जीने के लिए एक गाइड जैसा लग रहा है। इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि नैतिक सुधार सिर्फ महात्माओं का काम नहीं है, ये हम सबका रोजमर्रा का काम हो सकता है और होना चाहिए। ये हमें अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिसे हम अक्सर एक रूढ़िवादी, ना बदलने वाली परंपरा समझते हैं, वो असल में कितनी गतिशील और अनुकूल रही है। इसने बाहरी हमलों को झेला, अंदरूनी बहसों को जगा दी और आज भी नए रूप में सामने आ रही है। ये सिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता दुश्मन नहीं, साथी हो सकते हैं। कन्फ्यूशियसवाद हमें याद दिलाता है कि अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा समाज बनाना, ये दो अलग चीजें नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज के इस दौर में, जहां तकनीक और व्यक्तिवाद हमें शायद एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, क्या कन्फ्यूशियसवाद के ये विचार सामूहिक जिम्मेदारी, रिश्तों की अहमियत और नैतिक आत्म सुधार, क्या ये हमें एक ज्यादा संतुलित और मानवीय रास्ता दिखा सकते हैं, या ये सिर्फ बीते जमाने की अच्छी लगने वाली बातें हैं? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।